शीर्षक जोग ठगोरी ब्रजनबी के हैं, ब्रैकेट में बाजार और बाजारवाद की विमर्श में सूरदास। भूमंडलीकरण, सूचना संचार क्रांति, विश्वग्राम, सारी दुनिया का एक गांव में सीमित हो जाना, वित्तीय पूंजी का मकड़ा जाल और उसके संस्थानिक पूंजीवाद का विश्व वर्चस्व, भूमंडलीकरण तथा उसके बाजार तंत्र से उपजे मोहक सपनों का विश्वव्यापी मायालोक, इन सपनों के सौदागरों की विश्वव्यापी लुभावनी विज्ञप्ति और क्रियाकलाप, नव स्वतंत्र विकासशील कमजोर और पिछड़े हुए देशों को हजार बाहों वाले इस संस्थानिक पूंजीवाद द्वारा अपनी लपेट में जकड़ लेना, अपनी शर्तों पर कर्ज देकर इन्हें अपने बाजारों में बदलना, इन देशों के समाज के एक अच्छे खासे तबके का सुख भोगवाद और बाजार की माया लोक में अंध समर्पण, गत सदी के अंतिम दशक से अब तक बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। भूमंडलीकरण के इस तिलस्म के बारे में बाजार के इस माया लोक पर, एक ओर भूमंडलीकरण के आकाओं और संस्थानिक पूंजीवाद के धन्ना सेठों द्वारा रचा गया सुख भोगवाद का मोहक संसार, दूसरी ओर सांसारिक पूंजीवाद का जकड़न में फंसे उसके कर्जदार देशों के समाज का रोमांचक यथार्थ, राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र परंतु अपनी आर्थिक संप्रभुता को दावे पर लगाए इन देशों की बहुसंख्यक जनता के निहायत त्रासित जीवन संदर्भ, इनके समाजों में उफनाता उमड़ता अपसंस्कृति का सैलाब सतह पर ही दिखाई देती, उनकी बेहद तीखी विषमता, विलक्षण है भूमंडलीकरण से उपजा यह कंट्रास्ट। संपन्नों और विपन्नों का एक ही समाज में यह बेधक सह अस्तित्व, और यह भी दुनिया उस दुनिया के जिसे एक गांव कहकर विज्ञापित किया जा रहा है और जिसमें समाज के ये दोनों तबके एक विपर्यस्त जीवन जीने की नीति पाए हुए हैं। पृष्ठ संख्या 300। संस्थानिक पूंजीवाद का बाजार तंत्र इन देशों में लाया है उसके छोटे से हिस्से के लिए तरह तरह की मान्यताएं, रंगीनी और चमक दमक, और बड़े हिस्से के लिए महज देखने, कूढ़ने, ललकने, विक्षुब्ध होने की अभिशप्त नियति। सरकार का दावा है कि मनोरंजन के साधन समान रूप से सबके लिए सुलभ करा दिए गए हैं, सो समाज का यह बड़ा हिस्सा अपने दर्पों, अपनी झुग्गी झोपड़ियों में दूरदर्शन के पर्दे पर देख रहा है, अपने जिंदा रहने भर की बुनियादी जरूरतों की कीमत पर छोटे हिस्से के लिए लाया गया, रचा गया सुख भोगवाद का यह संसार, और उस संसार को जीने वालों को, आदमी को, साधारण आदमी को अपमानित करने वाला ऐसा निर्लज्ज अर्थतंत्र जो पहले के पूंजीवाद में भी नहीं था, और जिस तरह का संवेदन शून्य, स्वार्थी, लोभी, आत्म केंद्रित व्यक्ति इस बाजार तंत्र ने हमारे समय में पैदा किया है, वैसा आदमी भी शायद पहले नहीं था। हवस, सुख भोगवाद की हवस आदमी को कितना खुदगर्ज, लंपट और छिछोरा बना सकती है, यह अपने इस समय में हमने देखा है। इस बाजार और बाजार तंत्र ने बहुत कुछ हमारे जीवन का बहुमूल्य, बहुत कुछ लीला और पचाया है, और बचे हुए को भी लीलने और पचाने पर आमादा है। हमारे जीवन मूल्य, स्मृतियां, परंपराएं, संस्कृति, भाषा, अस्मिता, विरासत का बहुत कुछ समा गया है उसके अदर में। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़े बड़े व्यापारी अपनी ठगोरी लिए सुभा रहे हैं हमारे समाज के 35 करोड़ की आबादी वाले इस मध्य वर्ग को, और वह बेसुध होकर आंखें बंद करके धस गया है बाजार के माया लोक में, बिना यह जाने सोचे कि उसकी अंधी अंधेरी सुरंग से वह कभी बाहर भी निकल पाएगा या नहीं। बहरहाल बाजार की माया अभी तो उसे इस कदर मोहे हुए है कि उसे कुछ भी सोचने की फुर्सत नहीं। ऐसे कठिन समय में, ऐसे रोमांचक माहौल में बरबस याद आ जाते हैं कभी कबीरदास, तो कभी सूरदास, और कभी उन जैसे हमारी विरासत के दूसरे कुछ लोग। कबीर भी अपने समय में बाजार से बहुत परेशान थे, उनकी लीलाएं देख देख कर बेहद आहत और इक्षुब्ध थे। रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन उन्हें अच्छा खासा परेशान किए हुए थी, परंतु कबीर के समय में बाजार और घर में फर्क था। कबीर घर से चलकर हाथ में लुकाठी लिए बाजार आए थे, आज बाजार हमारे घर के भीतर उसके चप्पे चप्पे में आ गया है, हमारे जेहन और वजूद में विज्ञापित है। पृष्ठ संख्या 301। बाजारू होना या कहलाना आज गली नहीं, हमारे लिए मध्य वर्ग की आन बान शान और पहचान है। बाजार की फितरत को अपने ढंग से सूरदास ने भी अपने समय में देखा और अनुभव किया था, और अपने अनुभव को अपने कहे लिखे के सबसे संवेदनात्मक अंश में खूबसूरती और गहरी व्यंजना के साथ बुना था। भ्रमर गीत के आरंभ में ही उन्होंने अपने अनुभव को इन शब्दों में सजीव किया था। आयो घोष बड़ो व्यापारी, गोपियां एक अजनबी को अपने घोष या गांव में देखकर आपस में बतियाती, शहर से गांव में आने वालों को संबोधित करती है। जो शहर से गांव आया है वह व्यापारी है, और मामूली व्यापारी नहीं, बड़ो व्यापारी है। उसके पास माल की एक पूरी खेप है जो उसने गांव में उतारी है। खेप लाई गुरु जोग ज्ञान की, ब्रज में लाई उतारी। उद्धव गोपिकाओं के लिए योग और ज्ञान का उपदेश लेकर उनके यहाँ आए थे। गोपिकाएं उनके योग और ज्ञान को ही उनके माल की खेप कह रही हैं। पैराग्राफ चेंज। अब अपने समय के पट पर लिखी गई सूरदास की इस इबादत को उसके नए अर्थ संदर्भ में हम अपने समय में पढ़ें। उद्धव के पास उसका जो माल था, अर्थात योग और ज्ञान की बातें, उसकी खेप उन्होंने ब्रज में उतारी। हमारे समय के बड़े व्यापारी यानी आज के मल्टीनेशंस अपने यहाँ से चलकर हमारे यहाँ गवई गांव के हिंदुस्तान में, जो उनका बाजार बन चुका है, अपने अपने माल की खेप के साथ मौजूद है। सुख भोगवाद के सारे भौतिक साधन उपकरण उनका एक पूरा जखीरा है। उद्धव ने जिस तरह गांव की अज्ञ अपढ़ गोपिकाओं के समक्ष योग और ज्ञान के अपने माल की अतिरंजित प्रशंसा करते हुए लुभाने भरमाने की कोशिश की थी, हमारे समय के बड़े व्यापारी अपने सुख भोगवाद के जखीरे की वैसी ही अतिरंजित प्रशंसा अपने ग्राहकों से कर रहे हैं। समाचार पत्रों, दूरदर्शन के पर्दे पर सब तरफ उसके प्रचार की धूम है। अंतर इतना ही है कि अज्ञ अपढ़ होते हुए भी ब्रज की गोपिकाएं अपने सहज ज्ञान से यह जान गई थी कि व्यापारी के पास जो कुछ है और जिसकी वह प्रशंसा कर रहा है वह ठगौरी से अधिक कुछ नहीं है, और व्यापारी की नीयत भी साफ नहीं है, यानी धूर ही ते खोटो खायो है। जबकि हमारे समय के बड़े व्यापारियों ने अपने जिन ग्राहकों के लिए अपना माल उतारा है, वे ग्राहक हमारा पढ़ा लिखा नया मध्य वर्ग उन सहज ज्ञान से वंचित है जो गोपिकाओं के पास था। गोपिकाओं के लिए उनके व्यापार का माल ठगौरी था, जबकि हमारे समय के पढ़े लिखे उसे न्यायमत मान रहे हैं, उस व्यापारी के छलावे में आ गए हैं। अब किसे वस्तुतः शिक्षित माना जाए? गोपिकाएं हमारी नजर में निरक्षर शिक्षिता थी। प्रश्न संख्या 302। हमारा यह नया मध्य वर्ग साक्षात अशिक्षित से अधिक की हैसियत नहीं रखता। सूर की गोपिकाओं में वह समझ, यह सहज विवेक था कि व्यापारी उन्हें बहुमूल्य बताकर जो कुछ देना चाह रहा है वह उसकी तुलना में अनाज की फटकन भर है, जिसे वह बदले में लेना चाह रहा है, और जो उसके लिए स्वर्ण, उसकी अस्मिता उनका जीवन है, अर्थात कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, यानी फाटक दे के हाटक मांगत। जो कुछ व्यापारी के पास है वह मूली के पत्तों तथा निबोरी से अधिक की अहमियत नहीं रखता, और बदले में उनसे चाह रहा है वह ब्रज जो उनकी तुलना में दाख यानी अंगूर और मोती के मानिंद है। व्यापारी धोखेबाज है, मूली के पातन के बदले को मुक्ता हल देहें तथा दाख छाण के कटुब निबोरी को अपने मुख खेहें, वे व्यापारी के माल को सिरे से खारिज कर देती हैं। तुलना कीजिए हमारे समय के पढ़े लिखों के व्यवहार से, सहज विवेक से वंचित हमारे समय का पढ़ा लिखा यह नया मध्य वर्ग उस माल को मान्यत मान रहा है जो बहुराष्ट्रीय उसके सुखभोग के लिए लाए हैं। वह यह फर्क नहीं कर पा रहा है। वह इतना मुग्ध है बाजार की माया से कि बदले में उसका वो कुछ पा रहा है, या वह बाजार और व्यापारी बदले में उससे जो कुछ ले रहे हैं, उसके जीवन मूल्य, उसकी जाति स्मृतियां, परंपरा, भाषा, अस्मिता, यह सब व्यापारियों से पाए हुए की तुलना में उसका अपना स्वत्व, उसका सर्वस्व, अपनी जातीय पहचान बेहद बहुमूल्य है। गोपिकाओं ने अपने व्यापारी के माल को अपने वजूद और अपनी अस्मिता के बरक्स खारिज कर दिया था। हमारा नया मध्य वर्ग अपने वजूद, अपनी अस्मिता की कीमत पर बहुराष्ट्रीय इजारेदारों की संस्कृति, जीवन मूल्य तथा सोच की छाती से लगाए आत्म मुग्ध है। पैराग्राफ चेंज। सूर की गोपिकाएं अपढ़ थीं, पर सहज ज्ञान और सहज विवेक से पुष्ट उनके तर्क इतने वजनदार कि उनके व्यापारी को अपना मोल मता लेकर ब्रज से वापस जाना पड़ा था। हमारे समय के व्यापारी हमारे मध्य वर्ग की आत्ममुग्धता के नाते निश्चिंत अपना कारोबार कर रहे हैं। गोपिकाओं ने चुनौती के स्वरों में अपने व्यापारी से कहा था, जोग ठगोरी ब्रजनबी के हैं, यह व्यापार तुम्हारा उधो ऐसे ही रही जय हैं। परंतु हमारे सुखभोगवादियों में यह भूता नहीं है कि वह बहुराष्ट्रीय इजारेदारों की पूंजी और उनके बाजार की मान्यताओं को नकार सके। वे उसे छाती से लगाए अपने को परम सौभाग्यशाली मान रहे हैं, पूरे देश को उनकी चरागार बनाने के लिए लालायित हैं। पृष्ठ संख्या 303। सचमुच इस नौढ़ढ़ मध्य वर्ग से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वे कभी बाजार की इस अंधी सुरंग के बाहर आ सकेंगे, अपने स्वत्व और देश के स्वत्व की रक्षा कर सकेंगे। हमारी आशा का संबल है वंचित उपेक्षित वास्तविक भारत के वे विपन्न नागरिक, उसके साधारण जनजीवन जिनके जीवन की बुनियादी जरूरतों की कीमत पर संपन्नों के लिए सुख भोगवाद का जो स्वर्ग हमारे सत्ताधारियों ने रचा और रचाया है। इसके पहले कि बाजार और बाजारवाद की ताकतें हमारे देश की साधारण जन की मानसिकता और सोच पर सेंध लगाएं, उसे प्रदूषित करें, हम जो अपने को जनधर्मी रचनाकार और बुद्धिजीवी कहते और मानते हैं, आत्मालोचन करें, अपनी जनधर्मिता को जांचे और परखे, महज शब्दों तक, महज उत्सव आयोजनों तक, महज बौद्धिक विमर्शों तक भी सीमित न रहकर अपने कहे लिखों को ठेठ उस जन के बीच ले जाएं जो हमारी प्रतीक्षा में है। दोनों बाहें फैलाएं, हमारे स्वागत को तैयार है। हम उसे यह एहसास दिलाएं कि उसके सुख दुख दुख दर्द में हमारी सच्ची साझेदारी है। हम उसके साथ हैं, उसके लिए लिख रहे हैं, उसके पक्ष से संघर्ष के हर पहलू को अपनाने के लिए तैयार हैं। उसकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। साधारण जन से हमारा यह एकात्म ही बाजार और बाजारवाद की चुनौतियों से निपटने में हमारा संबल बनेगा। तभी बहुराष्ट्रीय इजारेदार उस परिणति को पाएंगे जो सूरदास की गोपिकाओं ने अपने समय के व्यापारी को दी थी। साधारण जनों का यह भारत जनधर्मी रचनाकारों, संस्कृति कर्मियों और बुद्धिजीवियों की यह अंतर्ग्रहित शक्ति ही बहुराष्ट्रीय इजादारों को अपने माल के साथ देश की धरती से खदेड़ सकेगी और यही हमारे राष्ट्रीय स्वत्व को ही बहाल कर सकेगी। सूरदास के कहे लिखे को नए और बदले समय संदर्भ में नई अर्थवत्ता के साथ क्या हम पढ़ेंगे?